कल दसवें श्लोक की चर्चा चल रही थी जिसमें गोपियां ये वर्णन कर रही हैं कि पृथ्वी कितनी भाग्यशाली है क्योंकि स्वयं श्री वृंदावन धाम पृथ्वी लोक के ऊपर प्रकट हो चुका है। हम सुन चुके थे कि भगवान के आध्यात्मिक जगत में कई लोक हैं, कई वैकुंठ लोक, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ है कृष्ण लोक। कृष्ण लोक के भी तीन भाग हैं, द्वारका, मथुरा और वृंदावन। इस वृंदावन के कई नाम हैं, जैसे कि गोलोक, गोकुल, व्रज, श्वेत द्वीप या गोलोक वृंदावन इत्यादि। और ये सर्वश्रेष्ठ धाम है भगवान का। धाम वो जगह है जहां स्वयं भगवान निवास करते हैं या जहां उनका नाम है, उनका गुणगान है, उनका यश है, उनकी सामग्री है इत्यादि। तो वृंदावन सर्वश्रेष्ठ धाम है, पूर्ण चिन्मय है, सच्चिदानंद भगवान से अभिन्न है और यही मूल श्री वृंदावन धाम। यहां भौतिक जगत में कृष्ण भगवान की इच्छा से समय समय पर प्रकट होता है। इसको भौम वृंदावन कहते हैं। वैसे मूल वृंदावन और भौम वृंदावन में बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। परंतु जब हम एक वृंदावन को मूल वृंदावन कहते हैं और दूसरे को भौम वृंदावन कहते हैं, फर्क केवल इसलिए कि हम ये बताना चाहते हैं कि वो वृंदावन यहां इस भौतिक जगत में प्रकट हुआ है। केवल इस बात की पुष्टि करने के लिए हम ये भेद करते हैं नाम मात्र में, वैसे कोई अंतर नहीं है। और हालांकि ये भौतिक सृष्टि नश्वर है, फिर भी ये वृंदावन धाम जो इस भौतिक जगत के अंदर प्रकट हो चुका है उसका नाश कभी नहीं होता है। और वही मूल वृंदावन धाम जो कि स्वयं धाम है, जिस तरह से भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, वो यहां पर भौतिक जगत में पृथ्वी लोक के ऊपर प्रकट हो चुका है। जो वृंदावन धाम वैकुंठ लोकों के ऊपर नहीं है, जो ब्रह्म लोक के ऊपर नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, वो यहां पर इस निम्न श्रेणी के लोक पृथ्वी लोक के ऊपर प्रकट हो चुका है। इसलिए गोपियां कह रही हैं कि ये पृथ्वी धन्य है, पृथ्वी का गुणगान कर रही है। और कल हम ये भी देख चुके थे कि वृंदावन के उपस्थिति से या वृंदावन के प्राकट्य से पृथ्वी का यश की वृद्धि हुई है, उसका यश सब जगह फैल गया है, क्योंकि इस वृंदावन के अंदर दो विशेष गुण हैं। कौन से हैं वो दो विशेष गुण? पहला गुण क्या है? भगवान के चरण कमलों के चिन्ह जो कि सारे व्रज भूमि में फैले हुए हैं। जहां भी भगवान श्री कृष्ण घूमते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं, जो कि वैकुंठ में भी नहीं पाए जाते। क्यों? वहां चरण कमल में वो अपने जूते या पादुकाएं पहन के चलते हैं, बल्कि वृंदावन में नहीं चलते। क्यों? क्योंकि गाय नहीं पहनते। और हमेशा ब्रजवासी चिंतित रहते कि भगवान श्री कृष्ण के नाजुक कोमल चरण कमल अब कांटों से, पत्थरों से चुभे जा रहे होंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया की एक नहीं मानी, जूते नहीं पहने। और इसलिए वृंदावन का ये प्रमुख सर्वोपरि अलंकार है। वृंदावन का रज भगवान के चरण चिन्हों से सुशोभित रहता है। सबसे बड़ा ऐश्वर्य है ये वृंदावन धाम का। और एक बार ऐसे हुआ कि सारे ग्वाल बाल और पशु इनकी एक बड़ी सभा हुई। वैसे जंगल में तो अन्य गोपियां वगैरह नहीं जाती थी, केवल ग्वाल बाल वगैरह जाते थे। तो ये समस्या आ सकती है कि चरण चिन्ह जो है ये तो धूलि में है, कितने सारे गाय चलते हैं, लाखों लाखों संख्या में गाय हैं, पशु हैं, हिरण हैं, और इनके वहां रज के ऊपर चलने से शायद ये मिट जा सकती हैं। स्वाभाविक है, किसी मिट्टी में चरण के चिन्ह ज्यादा समय तक रहते नहीं है, तो फिर वृंदावन में ये रहते कैसे हैं? तो हुआ ये कि एक विशाल सभा बुलाई गई वृंदावन में, जंगल में। ग्वाल बाल वहां थे, मोर थे, हिरण थे, गाय थे, सब उस मीटिंग में हासिल हुए, शामिल हुए, और सब ने निर्णय लिया कि हम इस तरह से चलेंगे वृंदावन में कि जहां भी श्री कृष्ण के चरण कमल के चिन्ह हैं उनके ऊपर नहीं जाएंगे, अगर सामने आएगा तो बाजू से साइड से चले जाएंगे। तो इसलिए सारे ब्रज के निवासियों ने भगवान कृष्ण के चरण कमलों को सुरक्षित रखा है, क्योंकि ये वृंदावन का ऐश्वर्य है, बना के रखा है उन्होंने। और दूसरा ऐश्वर्य वृंदावन धाम का है मोर के नृत्य। तो भगवान श्री कृष्ण ने मोर को सुंदर तरह से नृत्य करने के लिए प्रेरित किया अपनी बांसुरी से। मोर भगवान के बांसुरी की ध्वनि सुनकर उन्मत्त हो गए, नशे में आ गए और झूम के सुंदर नृत्य करने लगे। बाद में उन्होंने भी कृष्ण को नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया, कृष्ण ने स्वीकार किया और बांसुरी बजाते बजाते मयूरों के बीच में वो भी नृत्य करने लगे। जुगलबंदी होने लगी, एक तो कृष्ण के बांसुरी में और कृष्ण के नृत्य में, और दूसरे कृष्ण के नृत्य में और मयूरों के नृत्य में। ऐसे सुंदर दृश्य देखने के लिए लाखों लाखों संख्या में पशु पक्षी अन्य प्राणी गोपगण सब इकट्ठे हो गए। गोवर्धन के नाना चोटियों के ऊपर तक सब प्राणी पहुंच गए। सब लोग विस्मित होकर, स्तब्ध होकर, अपने सांस को रोके हुए, आंखों को बड़े बड़े करते हुए इस नृत्य के अमृत का पान अपने आंखों से कर रहे थे और साथ साथ अपने कानों से कृष्ण के बांसुरी के अमृत का पान भी कर रहे थे। मनोहर दृश्य जो न केवल किसी इस सारे ब्रह्मांड में नहीं देखा जाता, परंतु वैकुंठ में भी नहीं देखा जाता। तो ये दो चीजें ये वृंदावन के सबसे बड़े ऐश्वर्य हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी का यश सारे ब्रह्मांड में और इसके परे भी वैकुंठ में फैल गया है। तो इस तरह से गोपियों ने वृंदावन और पृथ्वी की महिमा का गान किया। अब जो आने वाला श्लोक है, 11वां श्लोक, ये भी एक गोपियों के अन्य दल ने, यूथ या गण में, वो यहां चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा कर चुके हैं कल कि गोपियों की कई श्रेणियां होती हैं, जगह जगह अलग अलग वर्ग हैं गोपियों के, और अलग अलग दृष्टिकोण से गोपियों के अलग अलग वर्ग बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आयु के हिसाब से, आयु के हिसाब से ये बताया जा सकता है कि थोड़े गोपियां बिल्कुल किशोरी हैं, थोड़ी गोपियां हैं जो वरिष्ठ हैं क्योंकि वो उनकी माएं हैं या उनके सास हैं वगैरह। रस के दृष्टिकोण से भी गोपियों में विभाजन किया जा सकता है कि थोड़े गोपियां हैं जो माधुर्य रस में हैं, खास करके जो किशोरी हैं, और थोड़े गोपियां हैं वो वात्सल्य रस में श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, जैसे कि यशोदा मैया करती हैं। और फिर कल हम ये भी देख रहे थे कि स्वभाव के दृष्टिकोण से भी गोपियों का विभाजन किया जा सकता है। थोड़े हैं जो गर्म स्वभाव के हैं, थोड़े हैं जो मृदु स्वभाव के हैं, और थोड़े जो मध्य हैं। और एक दृष्टिकोण से भी गोपियों का विभाजन किया जा सकता है, और वो है कि वो कहां से आए हैं, उनका उद्गम। इसके बारे में कल प्रश्न हुआ था, इसलिए हमने सोचा कि आज इस बात का स्पष्टीकरण थोड़े विस्तार से किया जाना चाहिए कि किस तरह के गोपियां यहां वृंदावन में लीला कर रही थी, कौन सी गोपियां हैं जिन्होंने कि श्री कृष्ण के बांसुरी का वादन सुना था। इसके लिए हम थोड़े विस्तार में इसका चर्चा करेंगे। इसके लिए एक चार्ट बनाया हुआ है, ये सामने रखें इसके सामने ताकि सभी लोग देख सकें। इसको दिखाई पड़ रहा है तो यहां हम देख रहे हैं कि वृंदावन के अंदर कितने कौन से प्रकार की गोपियां हैं। मूल रूप से तीन प्रकार की, एक है जो स्वयं श्रीमती राधा रानी के दिव्य शरीर के विस्तारित रूप हैं, स्वयं राधा रानी के शरीर से आए हैं, इसीलिए श्रीमती राधा रानी के काया व्यूह कहलाते हैं। ये जीव नहीं है, इनका तत्व अलग है। दूसरे हैं नित्य सिद्ध गोपियां जो कि भगवान के धाम से यहां भौतिक जगत में आई हैं, भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के लीला में साथ देने के लिए। ये जीव तत्व है और ये कभी भी भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में नहीं रहे हैं, नित्य मुक्त रहे हैं ये, और अनादिकाल से नित्य राधा कृष्ण की लीला में भाग लेते हैं आध्यात्म जगत में, मूल गोलोक वृंदावन में। ये नित्य सिद्ध गोपियां केवल भगवान के कृष्ण के लीला में रस बढ़ाने के लिए, भाग लेने के लिए उनके साथ जाते हैं। जहां भी श्री कृष्ण और राधा रानी प्रकट होते हैं अलग अलग ब्रह्मांडों में, वहां वो उनके पीछे पीछे साथ साथ में जाते हैं। तो ये श्रीमती राधा रानी के काया व्यूह और ये नित्य सिद्ध गोपियां दोनों आध्यात्मिक जगत से आती हैं। तो जो यहां भौम वृंदावन में गोपियों की लीला हुई, उनमें से ये दो वर्ग भी थे जो सीधे गोलोक वृंदावन से आई थी यहां भौम वृंदावन में। साथ साथ तीसरी श्रेणी भी है गोपियों की, और वो है साधना सिद्ध गोपियां। साधना सिद्ध गोपी मतलब वो गोपी जिन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत भजन साधन तपस्या इत्यादि की थी, जिसकी वजह से अब उनको वृंदावन में जन्म मिला, किसी गोपी के गर्भ से जन्म मिला, और फिर वो गोपी बन के वृंदावन में राधा कृष्ण की लीला में भाग ले सके। तो ये सारे गोपियां पहले भौतिक जगत में ही थे और उनका प्रमोशन हो गया, मतलब आगे और उन्होंने प्रगति कर ली भक्ति में, और इसलिए उनको इस जन्म में भौम वृंदावन में जन्म मिला, चाहे वो किसी भी ब्रह्मांड में क्यों न हो। आप तो जानते हैं कि इस भौतिक सृष्टि में अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, और ये जो साधना सिद्ध गोपियां हैं, हो सकता है वो पिछले जन्म में किसी भी ब्रह्मांड में हुए हों। तो ये साधना सिद्ध गोपियां अलग अलग तरह की होती हैं, विशेष करके दो भाग किए जा सकते हैं, एक है यौथकी और दूसरे हैं अयौथकी। हम चर्चा कर चुके हैं कि वृंदावन के गोपियों के दल होते हैं जिनको समूह कहते हैं, ये बड़े दल होते हैं जिनमें तरह तरह के गोपियां होती हैं, अलग अलग रस के, अलग अलग आयु के, और इन समूहों में थोड़े छोटे दल होते हैं जिनको क्या कहते हैं, यूथ। और यूथ के जो प्रमुख होते हैं उनको यूथेश्वरी कहती हैं, जैसे राधा रानी, चंद्रावली इत्यादि। और फिर यूथों में भी और छोटे दल होते हैं जिनको क्या कहते हैं, गण। तो ऐसे थोड़े गोपी, ज्यादा से ज्यादा जो गोपियां होती हैं वो किसी न किसी यूथ में शामिल होती हैं, इनको यौथकी गोपी कहते हैं। हम अभी साधना सिद्ध गोपियों की बात कर रहे हैं। और ऐसे कई गोपियां होती हैं जो कि किसी भी यूथ में शामिल नहीं है, इनको अयौथकी गोपियां कहते हैं। तो पहले हम अयौथकी गोपियों की बात करें। ये अयोध्या की गोपी हैं स्वर्ग की देवियां, मतलब देवताओं की पत्नी। अब इनके बारे में बताया जाता है कि ये इनके मन में लोभ आ गया था कृष्ण भगवान की सेवा के लिए, उसी भाव में जैसे वृंदावन की गोपियां करती हैं, इसलिए उनको ये जन्म मिल गया। आप तो जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होना चाहते हैं तो केवल पृथ्वी में प्रकट नहीं होते, ब्रह्मांड के किसी भी लोक में प्रकट हो सकते हैं और होते हैं। तो कई बार भगवान श्री कृष्ण अपने अंश रूप में अवतार लेते हैं स्वर्ग लोक में, और वो अकेले नहीं आते, जो उनके धाम की जो गोपियां हैं, गोपियों के अंश भी कृष्ण के अंश के साथ स्वर्ग लोक में प्रकट होते हैं। और ये देवियों का वेश पहनकर रहते हैं अन्य देवियों के बीच में, जैसे वामन देव हैं, वो भगवान के अवतार हैं, लेकिन वो एक साधारण देव बनकर देवताओं के बीच में रहते हैं, देवलोक में रहते हैं। उसी तरह से ऐसे गोपियों के अंश हैं जो देवियों के बीच में रहते हैं स्वर्गलोक में, देव और देवियां। तो कई देवी ऐसे होते हैं जो इन देवियों को समझ नहीं सकते, वो नहीं जानते हैं कि असलियत में ये लोग कौन है, लेकिन ऐसे कई गोपियां हैं, ऐसे कई देवियां हैं जो जानते हैं कि ये देवियां साधारण देवियां नहीं हमारी तरह से, वो सीधे भगवान के धाम से आई, उनके अंश रूप हैं ये। तो ये देवियां जो इन देवियों की असलियत को जानते थे, उन देवियों को उनका संग मिलकर थोड़ा लोभ हो गया, वृंदावन की भावना, वृंदावन के भावना में कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो उन्होंने कई सालों तक ऐसे भजन किया वहां, और इसकी वजह से उनको यहां पर जन्म मिल गया वृंदावन में, भौम वृंदावन में, और उन्होंने श्री कृष्ण की सेवा की और राधा कृष्ण की लीला में भी उन्होंने भाग लिया। तो ये है अयोध्या की गोपियां। अब आई बात अयोध्या की गोपियों की। अयोध्या की गोपी को भी कई वर्ग होते हैं, तीन वर्ग आप देख रहे हैं। पहले है श्रुतिचारी गोपी, दूसरे हैं ऋषिचारी गोपी, और तीसरे हैं जो देवियां या जो महिलाएं रामलीला में भाग ले रही थीं। तो एक एक करके इनके बारे में बात करें। ऋषिचारी गोपियों के बारे में पहली बात करते हैं, जो बीच में है, दंडकारण्य की ऋषि। हुआ ये कि जब प्रभु रामचंद्र वनवास में गए थे तो दंडकारण्य चित्रकूट से आगे वहां कई सालों तक निवास किए, कई लीलाएं वहां उन्होंने किए। वहां पे उन वनों में बहुत सारे शुद्ध हृदय के ऋषि रहते थे जो गोपाल का भजन करते थे पूरी तरह से। अब उनको व्रज भाव नहीं आया था, लेकिन शुद्ध सत्व स्तर पर थे, आध्यात्मिक थे, लेकिन ब्रज भाव अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। इस दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ी बहुत अपूर्णता थी, हालांकि वो बहुत शुद्ध थे। और गोपाल का भजन करते करते एक दिन अचानक उन्होंने देखा कि अरे, ऐसे लग रहा है कि ये यही हमारे गोपाल हैं, लेकिन केवल उनके पास बांसुरी नहीं है और उनके शरीर का रंग बदल गया है, नहीं तो लगते हैं कि हमारे गोपाल जैसे ही सुंदर हैं। तो फिर उन्होंने आके प्रभु रामचंद्र जी से निवेदन किया कि हम भी आपकी सेवा करना चाहते हैं। प्रभु रामचंद्र जी उनकी सेवा से प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि वरदान मांगो। तो इन ऋषियों के मन में विचार आया, यथा सीता तथा सर्वे, हम सब जो ऋषि हैं हम चाहते हैं कि जिस तरह से सीता देवी के साथ आपका संबंध है, जिस तरह सीता देवी आपकी सेवा करती हैं, वैसे हम भी सेवा करना चाहते हैं, मतलब माधुरी रस। दूसरे शब्दों में ये ऋषि चाहते थे कि वो भी प्रभु रामचंद्र जी के साथ इस माधुरी रस की भाव में सेवा करें, लेकिन बोलने के लिए हिचकिचाए, थोड़ा शर्माए। क्यों? क्योंकि उनका देह पुरुष का देह था। वैसे ये जो रसों की बात कर रहे हैं, इसका भौतिक शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, इसको आत्मा से संबंध है। आत्मा न तो स्त्री है न पुरुष, ये केवल भौतिक दृष्टि से हम इस दुनिया में भेदभाव करते हैं कि ये पुरुष है ये स्त्री है, लेकिन ये तो केवल बाहरी दृष्टिकोण है, ये तो भौतिक है। हो सकता है जो अभी पुरुष है इस जन्म में पिछले जन्म में स्त्री हो सकता है, हुआ था हो सकता है, और जो इस जन्म में स्त्री है हो सकता है कि वो पिछले जन्म में स्त्री थी पुरुष थी। तो ये तो भौतिक दृष्टि है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जो हम रसों की बात करते हैं वो आत्मा और कृष्ण की बात कर रहे हैं। तो फिर भी दुनियादारी की दृष्टि से ये ऋषि थोड़े हिचकिचा रहे थे बोलने के लिए, इसलिए अपने मन ही मन में वो सोच रहे थे यथा सीता तथा सर्वे। लेकिन प्रभु रामचंद्र भी तो अंतर्यामी है, उनकी बात समझ गए, कहने लगे कि धन्य हो कि आपके मन में ऐसे विचार आया, परंतु आप तो जानते हैं कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है, इसलिए इस जन्म में या इस अवतार में मैं आपकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। अगर आपने यही इच्छा लक्ष्मण के प्रति रखी होती तो अभी के अभी मैंने पूरी कर दी होती, क्योंकि लेकिन मैंने एक पत्नी व्रत रखा है, इसलिए मैं आपको वरदान देता हूं कि आपने जो सोचा है वो झूठ नहीं होगा, वो गलत नहीं आएगा। तो जब अगले युग में द्वापर युग में मैं वृंदावन में प्रकट हो जाऊंगा तो आप लोग शरद ऋतु में मेरा संग करने के लिए आपके सब कुछ छोड़ के आओगे और उस समय आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, फिर यथा सीता तथा सर्वे आप सबकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। और इस तरह से प्रभु रामचंद्र की कृपा से इन सारे दंडकारण्य के ऋषियों को द्वापर युग में वृंदावन में गोपियों के गर्भ से गोपियों का रूप धारण हुआ। तो ये हैं ऋषि चारी गोपी, और अन्य दो जो श्रुति चारी गोपियां हैं और अन्य जो महिलाएं हैं रामलीला की, उनके बारे में वर्णन सुनने के लिए एक हम ऐतिहासिक संवाद सुनते हैं जो कि नारद मुनि और राजा बहुलाश्व के बीच में हुआ। राजा बहुलाश्व का नाम आप सबने सुना है श्रीमद् भागवत से, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में वर्णन आता है इस राजा का। बहुत महान भक्त थे ये राजा, मिथिला में रहा करते थे और भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। इतने बड़े भक्त थे कि हालांकि मिथिला द्वारका से बहुत दूर है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण द्वारका से मिथिला चले आए खास उनको दर्शन देने के लिए। और मिथिला में राजा बहुलाश्व के साथ एक और भगवान कृष्ण के परम भक्त थे जिनका नाम था श्रुतदेव। श्रुतदेव गरीब थे, बहुलाश्व राजा थे, अमीर थे। तो भगवान श्री कृष्ण दोनों को देखने के लिए, दोनों को दर्शन देने के लिए द्वारका से चले आए कई ऋषि मुनियों को साथ में लेकर। दोनों राजा बहुलाश्व और श्रुतदेव अपेक्षा कर रहे थे कि राजा कृष्ण भगवान मेरे घर में रहेंगे। कृष्ण ने दोनों की इच्छा पूरी की एक साथ, कैसे, अपने आप को विस्तार कर दिया। तो इतने महान थे ये बहुलाश्व राजा। तो एक बार नारद मुनि राजा बहुलाश्व के दरबार में आए और बहुलाश्व ने उनकी अच्छी तरह से स्वागत किया, पूजा की उनकी, और फिर नारद मुनि से प्रश्न किए गोविंद की लीला के बारे में, उनसे कहा कि श्री कृष्ण लीला कुछ हमें सुनाइए। तब नारद मुनि ने बहुत सारी सूक्ष्म और रहस्यमय बातें भगवत तत्व के बारे में राजा बहुलाश्व को सुनाई, जैसे कि श्री कृष्ण के आविर्भाव का रहस्य, श्री कृष्ण के धाम का रहस्य, श्री कृष्ण के लीलाओं का रहस्य, श्री कृष्ण के जो पार्षद होते हैं उनका रहस्य। विशेष करके नारद मुनि वर्णन करने लगे राजा बहुलाश्व को गोपियों के बारे में, और कहने लगे कि ऐसे कई गोपियां हैं जो नित्य सिद्ध हैं, जो उनके धाम से आती हैं, इनका वर्णन नारद मुनि ने कहा। और फिर ऐसे भी गोपियों का वर्णन किया जो इस भौतिक जगत में रहते हुए साधना करते करते ऐसे ऊंचे स्तर तक पहुंचे कि वो इस योग्य हुए कि उनको अगला जन्म ब्रज गोपियों के गर्भ से वृंदावन में मिला। फिर वो वर्णन करने लगे इन श्रुति चारी गोपियों के बारे में। श्रुति मतलब ये वेद और उपनिषद। तो आप तो जानते हैं कि वेद भगवान के श्वास से उत्पन्न हुआ, भगवान नारायण के सांस से, और हर एक उपनिषद या वेद के पीछे एक कोई ऋषि है जो इसके लिए जिम्मेदार है, इनके अधिकारी। कई रविवार पहले हम वेद व्यास जी के बारे में सुन रहे थे, जब यह वर्णन हो रहा था कि वेद व्यास जी ने वेद को लिखित रूप में किया, उनका संपादन किया और फिर इनके अलग अलग भाग करके अलग अलग शिष्यों को सौंप दिया। तो इसी तरह से सृष्टि के शुरुआत के समय, मतलब सृष्टि के निर्माण के पहले ही भगवान नारायण के सांस से जब सारे वेद शास्त्र श्रुति उत्पन्न हुए, तो हर एक श्रुति के साथ एक अधिकारी ऋषि थे जो उस वेद के मास्टर थे, उसमें निपुण थे, और उनका कर्तव्य था कि इस श्रुति को आगे बढ़ाना परंपरा में। तो कुल मिलाकर ये 28 थे। तो हजारों हजारों सालों तक ये रागानुग भजन कर रहे थे। रागानुग भजन मतलब बिल्कुल स्वाभाविक तौर से आकर्षित होकर भगवान का भजन करना। रूप गोस्वामी समझाते हैं कि भक्ति के तीन स्तर होते हैं। एक को कहते हैं साधना भक्ति, दूसरे को कहते हैं रागानुग भक्ति। साधना भक्ति के दो वर्ग हैं, एक को वैधिक भक्ति कहते हैं, दूसरे को रागानुग भक्ति कहते हैं, और उसके बाद है भाव भक्ति और अंतिम स्तर में प्रेम भक्ति। तो जो पहले तरह की भक्ति है साधना भक्ति, उसके पहले भाग में विधि विधानों के अनुसार भक्ति की जाती है, जैसे हम सब कर रहे हैं। जब विधि विधानों का पालन करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति तीव्र आकर्षण हो जाता है, स्वाभाविक तौर से जब भक्त सेवा करने लगता है तो वो रागानुग अवस्था में पहुंच जाता है। तो आगे चलने वाले जो भी भक्त हैं वो इस रागानुग जो भक्ति है उनकी बुनियाद है, इस आधार पर स्थित होकर वो भगवान की सेवा करते हैं और भी प्रगति करते हैं, फिर भाव भक्ति में पहुंच जाते हैं, आगे चल के प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो श्रुतिचारी जो ऋषि थे, ये लोग ऐसे रागानुग भजन हजारों हजारों सालों तक कर रहे थे। तो आखिर भगवान प्रसन्न हुए, उनके सामने आए और उनसे कहा कि मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं, आप मेरे बहुत प्रिय हो, तो आप कोई भी वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि पुराणों में आपके एक ऐसे सुंदर रूप का वर्णन है जो सबको मनमोहित कर देता है, तो हम उस रूप को देखना चाहते हैं, ये कृपा हमारे ऊपर कीजिए। तो भगवान ने कहा अवश्य। अब ये जो ऋषियां हैं उन्होंने केवल भगवान के ऐश्वर्यशाली रूप को देखा था, जिनके हजारों सर हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों अंग हैं इत्यादि, जो सृष्टि के निर्माण से संबंधित है, ऐसा रूप को देखा था, अर्थात विष्णु रूप। लेकिन अब इन ऋषि मुनियों ने एक विशेष अद्भुत रूप देखा। अचानक उनके हृदय के भीतर उन्होंने ये दृश्य देखा कि एक सुंदर धाम है, बड़ा मनोहर रम्य वातावरण है, वहां पर यमुना नदी बह रही है, वहां एक पर्वत है जिसका नाम है गोवर्धन, जगह जगह पक्षियां कूज रहे हैं, वहां पर भंवरे भी गुनगुना रहे हैं, कृष्ण कथा कर रहे हैं, और वहां पर नाना प्रकार के सुंदर कल्प वृक्ष हैं, सुंदर गाय हैं, मतलब उन्होंने पूरी तरह से गोलोक वृंदावन का दर्शन किया। और वहां पर इस चिंतामणि रज के ऊपर अपने चरण कमलों को रखते हुए एक सुंदर पुरुष थे जो तुरंग ललित रूप में बांसुरी बजा रहे थे, और उनके साथ में अन्य सुंदर युवतियां थीं, और ये रत्न सिंहासन के पास में खड़े थे, और फिर ये पुरुष थे श्याम सुंदर कृष्ण। जब उन्होंने देखा इस सुंदर दृश्य को, भाव विभोर हो गए। और फिर वही भगवान के सामने आए और कहने लगे, ठीक है, आपकी जो मनोवांछा थी उसको मैंने पूरी कर ली, आपको वो रूप देखना था जिसको पुराणों में वर्णन किया है, जो बिल्कुल मनोहर है, तो अब कहो, अब आगे क्या इच्छा है आपकी, क्या वरदान दे सकता हूं मैं आपको। तो फिर वो कहने लगे कि हम आपके इस सुंदर रूप से इतने आकर्षित हो गए हैं कि हम इसी तरह से आपकी सेवा करना चाहते हैं जैसे इस वृंदावन धाम में हमने गोपियों को करते हुए देखा, वो भजन हमें करना है। तो फिर भगवान सोचने लगे, कहने लगे, धन्य हो, आपके अंदर जो इच्छा है ये तो साधारण इच्छा नहीं है, बहुत कम लोग ऐसी इच्छा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये असंभव है, संभव नहीं है, क्योंकि आपकी भक्ति अभी तक अपूर्ण है, परंतु मैंने वचन आपको दिया है कि जो भी है वरदान मांगू मैं पूरी कर दूंगा, इसलिए आपकी इच्छा पूरी होगी। जब सृष्टि का निर्माण होगा तो अगले ब्रह्मा का जन्म जब होगा तो उस ब्रह्मा जी के सारस्वत कल्प में आपका जन्म इस वृंदावन भूमि में होगा, जब वृंदावन भूमि वृंदावन धाम इस भूलोक पर पृथ्वी लोक में भारतवर्ष में मथुरा मंडल में प्रकट हो जाएगा और उस समय आपको जन्म मिलेगा गोपियों के गर्भ से, और आप उस समय व्रज भाव में गोपियों के भाव में मेरा भजन कर पाओगे। इस तरह से भगवान कृष्ण की कृपा से इन ऋषि मुनियों को जन्म मिल गया वृंदावन में। तो इन गोपियों को कहते हैं श्रुति चारी गोपी। इनमें और दंडकारण्य के ऋषियों में अंतर यह था कि इनका भजन रागानुग स्तर पर हो गया था और प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के थोड़े से पहले उनको ब्रज में जन्म मिल गया था, लेकिन दंडकारण्य के जो ऋषि हैं वो इतने आगे नहीं बढ़े हुए थे, लेकिन फिर भी भगवान श्री रामचंद्र की कृपा से उनको ब्रज प्राप्त हो गया। फिर बात रही इन महिलाओं की रामलीला में, इनके बारे में कम सुनाई पड़ता है, हमने तो श्रुतिचारी गोपी और ऋषिचारी गोपियों के बारे में तो सुना है, तो ये रामलीला की महिलाएं कौन है जिनको की गोपियों का शरीर मिला। तो नारद मुनि वर्णन करने लगे कि जब श्री रामचंद्र विश्वामित्र मुनि के साथ में मिथिला पहुंचे तो वहां उन्होंने सीता जी के स्वयंवर में भाग लिया। आप तो जानते हैं कि विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को दशरथ महाराज के अनुमति से ले आए थे, क्योंकि विश्वामित्र मुनि के आश्रम में कई ऐसे राक्षस थे जो उत्पात पैदा कर रहे थे, यज्ञ को प्रदूषित कर रहे थे। हालांकि विश्वामित्र मुनि के पास ये शक्ति थी कि इनका संहार करे, फिर भी वो ब्राह्मण थे, वो क्षत्रिय का कार्य नहीं करना चाहते थे, राक्षसों को का वध करना ये क्षत्रियों का काम होता है, इसलिए वो राम और लक्ष्मण को लाए। साथ साथ विश्वामित्र मुनि ये भी चाहते थे कि श्री रामचंद्र का यश और गौरव सब जगह बढ़े, जब ऐसे असुरों का वो वध करेंगे तो उनका गुणगान और बढ़ जाएगा। तो जब श्री रामचंद्र ने इन राक्षसों का वध किया या उनको दमन किया तो विश्वामित्र मुनि उनको लेकर गए मिथिला में, और मिथिला में स्वयंवर में वो कथा आप जानते हैं, प्रभु रामचंद्र जी ने धनुष उठाया और उसको तोड़ भी डाला। किनका धनुष था वो? परशुराम का नहीं, शिव जी का था, शिव जी का धनुष था वो, और फिर सीता देवी के साथ उनका विवाह हो गया। तो उधर मिथिला नगरी में प्रभु रामचंद्र जी का सीता देवी के साथ विवाह तो हो गया, परंतु और कितने सारे मिथिला के विवाहित स्त्रियां थीं जिन्होंने श्री राम को देखकर इतने आकर्षित हुए कि वो सीधे आकर श्री राम से कहने लगे कि हम भी आपकी पत्नी बनना चाहते हैं, आप भी हमारे पति बनिए, क्योंकि हम भी आपको इस भाव में सेवा करना चाहते हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है, तो इस जन्म में नहीं, लेकिन आपको अगले जन्म में जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा मैं आपको व्रज में जन्म दिला दूंगा, आप गोपी बन जाएंगे। तो इसलिए ये मिथिला के कई स्त्रियां जो हैं वो व्रज में गोपियों के गर्भ में जन्म लिए। फिर आगे चलते जब शादी के बाद विवाह के बाद श्री रामचंद्र दशरथ महाराज विश्वामित्र के साथ आगे जा रहे थे अयोध्या की ओर, तो वो कोसल प्रांत से निकल पड़े। कोसल में जब आए तो उस प्रांत में उन्होंने सबसे पहले परशुराम जी के गर्भ का दमन कर दिया। वो लीला आप जानते हैं, परशुराम के साथ विष्णु का धनुष था और परशुराम ने उनको चुनौती दी कि अगर आप वास्तव में शक्तिशाली हो तो इस विष्णु के बाण को आप उठाइए। शिवजी के धनुष को आपने उठाया है हमने सुना, अब ये विष्णु के धनुष को उठाइए। तो प्रभु रामचंद्र जी ने उनको उनके हाथों से छीन लिया और छीन कर फिर उस पर तीर लगा दिया और फिर उस तीर से कहा कि अब क्या करूं। तब परशुराम को समझा कि ये तो स्वयं भगवान है और फिर श्री राम ने ये तीर छोड़ दी आकाश में, जिससे कि परशुराम के स्वर्ग प्राप्ति की जो पुण्य थे वो सब क्षीण हो गए। फिर परशुराम ने प्रणाम किया श्री राम को और चले गए। तो उस कोसल प्रांत में भी कई महिलाएं थीं, जब श्री राम वहां से गुजर रहे थे ये भी बड़े प्रभावित हुए उनसे और प्रभावित होकर वो भी अपने मन ही मन में तपस्या करने लगे कि किस तरह से हमें श्री राम पति के रूप में पाए जाएं। वो भी वहां नदी के यमुना के पार तट में गए तपस्या करने के लिए और वही श्री राम उनके हृदय में से उनको प्रेरित किए और बोलने लगे कि ठीक है, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में जब मैं आऊंगा तो मैं आपको गोपियों का शरीर दे दूंगा। तो उनको भी गोपियों का देह मिल गया, कोसल की महिलाएं। तीसरे रहे अयोध्या। जब श्री राम वनवास के बाद वापस चले आए और इसके समय सीता देवी के साथ वापस चले आए, तो वहां अयोध्या की जो महिलाएं थीं जो अपने अपने घर के छतों से देख रहे थे कि श्री राम वापस आ रहे हैं, श्री राम के सुंदर रूप को देखकर वो कई बेहोशी हो पड़े और अपने मन में प्रार्थना कर रहे थे कि श्री राम हमारे भी पति हो जाएं। फिर आकाशवाणी आई, आकाशवाणी ने कहा कि नहीं, इस बार ये संभव नहीं है, अगले बार द्वापर युग में तुम गोपियां बन पाओगी। इसलिए ये अयोध्या की महिलाएं भी गोपियां बन गईं। साथ साथ यहां आप देखेंगे यज्ञ सीताओं का वर्णन है। तो यज्ञ सीताएं कौन हैं? आपको ये लीला पता है कि जब वनवास से रावण का वध करके विभीषण को सिंहासन पर बिठाकर जब श्री राम सीता देवी के साथ अयोध्या लौटकर आए, तो प्रजा के कुछ विरोध करने की वजह से श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण को सीता देवी के साथ भेज दिया और लक्ष्मण से कहा कि सीता देवी को वनवास में फिर से भेज दो। और लक्ष्मण सीता देवी को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़कर वापस चले आए। विरह की अग्नि में श्री रामचंद्र जलते रहे, परंतु धर्मपरायण राजा होने के नाते वो सीता देवी को वापस बुला नहीं पाए। परंतु समस्या ये आई कि जब यज्ञ किए जाने हैं तब पुरुष को अपने पत्नी के साथ में बैठना चाहिए। राजा होने के नाते उनका धर्म था यज्ञ करना, वैसे भी वो त्रेता युग का युग धर्म था। तो पत्नी अर्धांगिनी कहलाती है, पति का आधा अंग, तो पत्नी के बिना यज्ञ कैसे किया जाए? तो फिर उन्होंने क्या किया, किसी को पता है? सोने की सीता देवी बना दी। तो सोने की मूर्ति सीता देवी की बनाई और सोने की मूर्ति के पास में बैठकर उन्होंने यज्ञ किए। अब प्रभु रामचंद्र जी कई बार यज्ञ करते थे, क्योंकि वो युग धर्म था तो बार बार यज्ञ करने पड़ते। तो इसका मतलब है कि हर बार जब श्री रामचंद्र जी ऐसे यज्ञ करते, हर बार एक सोने की सीता देवी बनाते। तो कई यज्ञ किए, इसका मतलब है कितनी सीता देवी की सोने की मूर्तियां हो गई, कई हो गई। तो एक दिन ऐसे हुआ कि इनको सब यज्ञ सीता कहते थे, ये सोने की मूर्तियां हैं। तो कई यज्ञ सीताएं हो गई जो कि प्रभु रामचंद्र जी के महल में थी। और एक दिन ये सारे यज्ञ सीताएं जीवित हो गई और श्री राम के पास आई और कहने लगी कि हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि आपकी भावना तो सही है लेकिन मैं आपकी इच्छा स्वीकार नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा क्यों, हम भी तो आपकी पत्नी हैं, हम भी सीताएं हैं, तो हमारी इच्छा क्यों नहीं आप पूरे कर सकते। और वो कहने लगे कि बाहर एक व्यवहार अंदर अलग व्यवहार, ये कैसे ठीक नहीं आपके लिए, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। जब यज्ञ हुआ तो आपने हमारे हाथ पकड़े और अब अंदर करने के लिए क्यों नहीं तैयार। तो प्रभु रामचंद्र कहने लगे आपकी इच्छा अपूर्ण नहीं हो सकती, सही होगी, परंतु मैंने एक पत्नी व्रत लिया है। हाँ तो हम भी एक पत्नी सीता ही हैं, लेकिन नहीं, मैंने उस सीता के बारे में व्रत लिया है जो वन में है, जिसको मैंने बाहर भेज दिया है, किस वजह से आप वो भी जानते हो, तो मैं केवल उस सीता के साथ रह सकता हूं, लेकिन फिर भी आपने इच्छा की है और मैंने वरदान दिया है तो आपकी इच्छा भी सही होनी है। तो ठीक है, मैं ये वरदान देता हूं कि जब मैं द्वापर युग में प्रकट हो जाऊंगा तो उस समय आप गोपियों के रूप में आएंगे और आपकी इच्छा जो है मेरे माधुर्य भाव में सेवा करने के लिए, मेरा संग प्राप्त करने के लिए, वो उस समय पूर्ण हो जाएगा। इस तरह से ये यज्ञ सीताएं भी गोपियां बन गई। तो ये सारे साधना सिद्ध गोपियां हैं, श्रुतिचारी गोपी, ऋषिचारी गोपी और रामलीलाएं की ये सारी महिलाएं। तो अगले जन्म में उन सबको ये शरीर मिल गया, गोपी का शरीर मिल गया और उन्होंने माधुर्य भाव में भगवान की सेवा की। इसका मतलब है कि साधना सिद्ध गोपियां हैं और नित्य सिद्ध गोपियां हैं। साधना सिद्ध गोपियों ने साधना करके ये गोपी का रूप धारण किया, नित्य सिद्ध गोपियां हमेशा नित्य रूप से ही गोपियां हैं। तो दोनों साधना सिद्ध और नित्य सिद्ध गोपियां वृंदावन में रहती थी। हालांकि दोनों भाग लेती हैं, नित्य सिद्ध और साधना सिद्ध गोपियां व्रजलीला में, फिर भी हमें जानना चाहिए कि उनका स्तर एक समान नहीं है। साधना सिद्ध गोपियां विद्यार्थी हैं और नित्य सिद्ध गोपियां अध्यापक हैं। और ये विद्यार्थी मतलब साधना सिद्ध गोपियां नित्य सिद्ध गोपियों के नीचे प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत भी उनके अंदर जो कलमश बाकी है, थोड़ी बहुत जो भी अपूर्णता बाकी है वो भी खत्म हो जाती है, फिर अंततः वो भगवान के धाम में वो चले जा सकते हैं जबकि वो पूरी तरह से योग्य हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वृंदावन धाम जो है वो न केवल साधक भूमि है लेकिन सिद्ध भूमि भी है। दोनों जो साधक हैं और जो सिद्ध हो चुके हैं दोनों यहां पर तपस्या या भजन भगवान का कर सकते हैं। इस तरह से भौम वृंदावन से जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो ये साधना सिद्ध जो है वो चले जाते हैं भगवान के धाम। तो ये प्रश्न किया जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में रह के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है तो वो सीधे भगवान के धाम को जा सकता है या नहीं। अब जैसे हम सब यहां भजन कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं मतलब, तो आप सब भजन कर रहे हैं, अभी आप सीधे शुद्ध भक्त होने के बाद यहां से गोलोक वृंदावन भगवान के धाम में चले जाएंगे या नहीं। नहीं, कितने भक्त मानते हैं हां, कितने कहते हैं नहीं, कितने कहते हैं हां सीधे चले जाएंगे गोलोक वृंदावन मूल वृंदावन में। अच्छा, और कितने कहते हैं नहीं नहीं जाएंगे, फिर कहां जाएंगे हम। हम भी भौम वृंदावन में प्रकट हो जाएंगे, सीधे मूल वृंदावन में नहीं जाएंगे, भौम वृंदावन में जन्म लेंगे, जहां किसी भी ब्रह्मांड में हो सकता है, जहां किसी ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मूल वृंदावन को प्रकट किया हो, हमको वहां जन्म लेना पड़ेगा। हमें गोपियों के रूप में या कोई गोप गुरु जो भी हमारी भावना हो, कोई हिरण हो सकता है, कोई गाय हो सकते हैं, गायों के बीच में भी ऐसा है, हिरणों के बीच में भी ऐसा है, तो वहां किसी भौम वृंदावन में हमें जन्म लेना पड़ेगा। तो फिर प्रश्न ये आता है कि ऐसा क्यों, हम डायरेक्ट क्यों नहीं जा सकते? हाँ, क्योंकि हम अपूर्ण हैं, हमारी भक्ति अभी तक उतनी पूर्ण नहीं हुई है। ये जो भौतिक शरीर है जो कि 8 पदार्थों से बना हुआ है, ये बहुत नाजुक है, और इसमें ये सारे जो प्रेम भक्ति की भावनाएं हैं वो पूरी तरह से आ नहीं सकती हैं। ये जो भौतिक देह है एक बहुत सीमित यंत्र है प्रेम भक्ति, सबसे ऊंचे भक्ति करने के लिए। इसलिए ये भौतिक शरीर उसको सहन करने की क्षमता नहीं है। इस शरीर में ये शरीर नाजुक होने की वजह से उतनी तीव्रता का प्रेम हम इसमें सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उस ऊंचे स्तर के प्रेम भक्ति के लिए एक ऐसा ही कोई उपयुक्त देह चाहिए, शरीर चाहिए, जो कि आध्यात्मिक देह गोपी गोप का आध्यात्मिक देह मिलता है, जिस आध्यात्मिक देह में हम प्रेम भक्ति के स्तर में भी और प्रगति कर सकते हैं। हम चर्चा कर चुके हैं कि पहले स्तर में साधना भक्ति है, फिर भाव भक्ति है, और फिर प्रेम भक्ति है। लेकिन प्रेम भक्ति के भी 8 स्तर होते हैं, और उन 8 स्तरों में करते प्रगति करते 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 जो प्रगति करनी है उसके लिए हमें आध्यात्मिक देह चाहिए। इस भौतिक शरीर में इतनी तीव्रता का प्रेम संभव नहीं है। तो वहां आध्यात्मिक देह प्राप्त करके फिर प्रेम भक्ति के अलग अलग स्तरों में हम प्रगति कर सकते हैं। प्रेम स्नेह मान जो अलग अलग स्तर हैं, जो कि रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं, इसलिए हमें यहां पर जन्म लेना पड़ता है। तो फिर तीसरा प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि ठीक है, अगर हमें प्रेम भक्ति के अलग अलग स्तरों में प्रगति करने के लिए आध्यात्मिक देह चाहिए, तो ये आध्यात्मिक देह हमें गोलोक वृंदावन, मूल गोलोक वृंदावन में क्यों नहीं मिल सकता? वहीं पर जाकर हम ये प्रगति क्यों नहीं कर सकते? वहीं से जाकर हम प्रशिक्षण क्यों नहीं पा सकते? ये हम भौम वृंदावन में रहकर प्रशिक्षण क्यों प्राप्त करना है? तो इसके जवाब में ये बोला जाता है, आचार्य ऐसे समझाते हैं कि जो मूल गोलोक वृंदावन है वो पूर्णता का धाम है, वहां लेश मात्र भी अपूर्णता के लिए स्थान नहीं है। तो जब तक कि कोई 100% पूर्ण नहीं होता तब तक वो वहां प्रवेश नहीं कर सकता उस पूर्ण धाम में। इसलिए यहां भौम वृंदावन में उनको ट्रेनिंग मिला जाता है, प्रशिक्षण मिला जाता है, जिससे कि थोड़ी बहुत जो भी उनके अंदर अपूर्णता हो वो खत्म हो जाएगी, और जब पूरी तरह से पूर्ण हो जाएंगे तब वो फिर मूल गोलोक वृंदावन में जाने के लिए पक्के हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे। और दूसरी बात भी ये है कि गोलोक वृंदावन में हरेक गोपी का कोई ना कोई पहचान होता है कि ये इसकी पत्नी है, इसकी बेटी है, इसकी बहू है। तो अगर सीधे यहां से कोई भक्त भक्ति करके सीधे गोलोक वृंदावन चले जाए तो सब वहां पूछेंगे, अरे कौन है, किसकी पत्नी है, किसके पति है, किसके माता पिता कौन है, इसके सास कौन है, इसके ससुर कौन है, तो गड़बड़ हो जाता है। तो पहले भौम वृंदावन में जाते हैं, उस भौम वृंदावन में किसी भी ब्रजवासी के कुटुंब में शामिल हो जाते हैं जन्म लेकर, फिर उसी सिद्ध देह में उसी परिचय से वहां वो वृंदावन में रहने लगते हैं। जो भी उनका नाम है, ये गोपी है, ये गोप है, ये मंजरी है, जो भी। तो इसलिए ये कौटुंबिक कारण है कि उनका कौटुंबिक जो है परिचय ठीक ठाक रहना चाहिए। इसकी वजह से जो शुद्ध भक्त होते यहां से उनको पहले भौम वृंदावन में जन्म मिल जाता है, फिर वहां पर जाकर वो कृष्ण लीला में नित्य रूप से भाग ले सकते हैं। तो ये है इतिहास, किस तरह से गोपियां वृंदावन में लीला करती हैं, कौन से गोपियां, वो कहां से आती हैं। तो यही गोपियां हैं, ये सारे गोपियां मिलकर अपने अलग अलग दलों में ये वेणु गीत गा रहे हैं। तो अब ये 11वां श्लोक में वो सोच रहे हैं कि हमें इनका सौभाग्य देखना चाहिए, जो कि पशु प्राणी हैं। वृंदावन में कई पशुआ हैं, पशु हैं, जैसे मोर हैं इत्यादि, ये सब ब्रजवासी हैं। इनमें हमें कोई अंतर नहीं देखना चाहिए, इनको भी ब्रजवासी ही समझना चाहिए और हमारे आदर के ये इतने ही पात्र हैं। वृंदावन के जो असली भक्त हैं उनमें कभी कभी ऐसे भी देखा जाएगा कि कोई बंदर अगर आकर कोई शैतानी करे तो पत्थर लेके वो बंदर को शू शू करके हटाएंगे, उसके ऊपर गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन वही लोग आगे चल के उन्हीं बंदरों को बहुत सारे गाजर वगैरह खिलाएंगे बाद में जाकर, क्योंकि वो जानते हैं कि ये ब्रजवासी हैं। तो जैसे शास्त्रों में बताया जाता है कि देश के सारे प्राणी नागरिक कहे जाते हैं, उनको नागरिक का अधिकार है, उनकी हत्या नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह से वृंदावन में जो भी पशु प्राणी पक्षी मनुष्य रहते हैं वो सब ब्रजवासी कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्यों को ब्रजवासी कहना चाहिए। तो गोपियां देख रही हैं अपने महाभाव में कि ये सारे ब्रजवासी, पशु ब्रजवासी भी हैं, पक्षी ब्रजवासी हैं, ये बहुत भाग्यशाली हैं। और जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो मोर किस तरह से आकर्षित हुए, मोर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये हम कल सुन रहे थे। अब धीरे से एक एक करके वेणु गीत में हम ये सुनने वाले हैं कि वृंदावन में और अन्य जगहों में भी कृष्ण के बांसुरी का क्या असर होता है दूसरे प्राणियों के ऊपर। तो अब गोपियों का मन मोर से हटकर अभी हिरणों के ऊपर आ जाता है। हिरणें भी बहुत सारे हैं और किस तरह से हिरणों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, अब किसी दूसरे दल में गोपियां चर्चा कर रही हैं। तो आइए इस 11वें श्लोक को हम चर्चा करते हैं, इसका पाठ अब करेंगे। धन्यास्म स्ममूढगतयो पिपिहरण्य एता या नंद नंदनमुपात्र विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्ण साराह पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः धन्यः स्म मूढगतयोऽपि हरिण्य एताः या नन्दनन्दनमुपात विचित्रवेषम् आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्ण साराः पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः उपाद्वारा। ये मूर्ख हिरणियां धन्य है क्योंकि ये नंद महाराज के पुत्र के निकट पहुंच गई हैं, जो खूब सजे धजे हुए हैं और अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। हिरणी तथा हिरण दोनों ही प्रेम तथा स्नेह भरी चितवनों से भगवान की पूजा करते हैं। ये मूर्ख हिरणियां कृष्ण ने बहुत लंबे समय तक, कितने लंबे समय तक, ब्रह्मा जी की एक दिन तक नृत्य किया था। मोर तो थक गए थे लेकिन कृष्ण भगवान थके नहीं थे, लेकिन वृंदावन में ब्रह्मा जी का एक दिन जो है एक क्षण के समान प्रतीत हो रहा था। उसके बाद श्री कृष्ण थोड़े थक गए थे तो फिर से वो एक पेड़ के नीचे विश्राम कर गए और विश्राम करके करते करते उधर अन्य जो गोप थे वो गायों को इधर उधर ले गए चराने के लिए, और चराते चराते परस्पर आपस में वो अपने प्रिय मित्र गोपाल की चर्चा करते थे। बड़े प्रेम भरे आंखों से वो बड़े प्रेम से याद कर रहे थे भगवान कृष्ण के साथ जो उन्होंने सुंदर सुंदर लीलाएं किए थे। ये लड़के बड़े मासूम और शुद्ध थे और उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति आदर और प्रेम भी बड़ा शुद्ध और मासूम था। इस तरह से वो इधर उधर घूम रहे थे जबकि श्री कृष्ण यहां आराम कर रहे थे। जब कृष्ण जागे अपने नींद से तो अपने मित्र सुबल और मधुमंगल को लेकर इधर उधर वन में घूमने लगे, अभिनंदन करने लगे सारे वहां के प्राणियों की, प्राणियों को, वहां के पशु पक्षियों को, पेड़ों को। सबसे पहले लताओं के पास गए कि हे वल्ली, हे लता, क्या आप, आपके साथ सब कुछ ठीक ठाक है ना? हे बुद्धिमान वृक्ष, क्या सब कुछ आपके जीवन में शुभ है? हे भौरे, हे पक्षियां, आप सबका हालचाल कैसे है? हे चर अचर जीव, आप सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक है ना? करते हुए ऐसे श्री कृष्ण घूम रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, और इस समय उनके पास हिरणियां भी पास में आईं, जिन्होंने कि भगवान श्री कृष्ण का सुंदर नृत्य मयूरों के साथ में देखा हुआ था। यहां पे गोपियां हिरणियों को मूढ़ गतयः कहते हैं। मूढ़ गतयः, मूढ़ मतलब बहुत मूर्ख, गतयः मतलब यहां पर जिन्होंने जन्म लिया है, मतलब जिसमें मूढ़ जाति में जन्म लिया है। अब हम तो जानते हैं कि पशु जाति जो है उनमें बुद्धि इतनी विकसित नहीं रहती है, इसलिए यहां पर हिरणियां पशु जाति में होने के कारण गोपियां उनको मूढ़ गतयः कह रही हैं। तो वो कह रही हैं कि ये हिरणियां जो हैं ये मूर्ख है, मूर्ख योनि में उनको जन्म मिला है जहां बुद्धि विकसित नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत धन्य है, इनका जीवन बहुत भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली है मूर्ख होने के बावजूद? या नंद नंदनम, वो नंद नंदन श्री कृष्ण के पास जा रहे हैं और इतने पास जा रहे हैं कि प्राय श्री कृष्ण उनको उनके करकमल आगे बढ़ाकर उनसे स्पर्श भी कर सकते हैं। अब गोपियां वन में नहीं है, वो अपने घर में है और घर में रहते हुए अपने ध्यान में इस सुंदर दृश्य को देख रहे हैं कि हिरणियां इधर जा रही हैं और जाकर पास में वो कृष्ण को देख रही हैं और इस प्रकार से वो आनंद ले रही हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण प्रेम का आदान प्रदान जंगल के सारे प्राणियों से कर रहे हैं और ये हिरणियां भी पीछे पीछे जा रही हैं। और वो क्या देख रही हैं? नंद नंदन कैसे दिख रहे हैं? उपात विचित्र वेशम, उनका वेश बड़ा सुंदर है, अद्भुत। और जब वो देखती हैं कि भगवान श्री कृष्ण रंग बिरंगी सुंदर कपड़ों में कपड़े पहने हुए हैं, उनके सर में मोर पंख है, बढ़ापीरम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम। ये देख रहे हैं हिरणिया कि मोर पंख अपने पगड़ी में है, पगड़ी भी रंग बिरंगी कपड़ों से बना हुआ है, साथ साथ अन्य कई तरह के फूल वगैरह हैं, फूलों के झुंड लगाए हुए हैं कृष्ण भगवान ने जगह जगह अपने पगड़ी में, और इसे पगड़ी और भी खूबसूरत लग रही है। वैजयंती च मालाम, साथ साथ वैजयंती माला घुटनों तक लटक रही है। इसके अलावा नाना प्रकार के आम के पन्ने और आम के अंकुर वगैरह वो भी लगाए हुए हैं। इस तरह से श्री कृष्ण बड़े सुंदर लग रहे हैं, डैशिंग लग रहे हैं, और इसके प्रति आकर्षित होकर वहां पर सारे हिरणियां आई हैं। तो इसलिए गोपियां समझ रही हैं कि ये जो हिरणियां हैं इनका जीवन धन्य है, क्योंकि वो कृष्ण के पास आई हैं, इतने करीब आई हैं कृष्ण के। लेकिन गोपियां कृष्ण के पास आई क्यों, किस वजह से वहां आई, वो क्या प्रेरणा मिली उनको कृष्ण के पास जाने के लिए? पहले तो दूर से देख रही थी, फिर अब अचानक क्यों आ गई? तो यहां गोपियां कहती हैं, आकर्ण्य वेण रतिम। आकर्ण्य मतलब उन्होंने सुना, कर्ण के भीतर कुछ गया, क्या गया? वेणु रतिम, वेणु की ध्वनि, क्योंकि श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे तो बांसुरी की ध्वनि इन्होंने सुना और जैसे ही सुना सीधे आके चले गए। तो अब गोपियों ने पहले ही इन हिरणियों को मूर्ख कह के संबोधित किया है। मूर्ख क्यों? और एक दृष्टि से कि उनको पता नहीं है कि यह ध्वनि क्या है, यह ध्वनि कहां से आ रही है, उनमें वो विवेक बुद्धि नहीं है। आप तो जानते हैं कि शिकारी हिरण को या हिरणी को जंगल में कैसे पकड़ता है, कोई बता सकते हैं? बांसुरी। जो शिकारी होता है वो बांसुरी बजाता है और इस सुंदर ध्वनि को सुनकर आकर्षित हो जाते हैं हिरण और हिरणिया। ये इस सुंदर ध्वनि से, मधुर ध्वनि के प्रति बहुत आकर्षित होती हैं और ये विवेक बुद्धि उनके अंदर नहीं होती है कि ये जो बांसुरी का की ध्वनि है जो बहुत मधुर लगता है लेकिन ये शिकारी बजा रहा है और हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। तो ये ध्वनि कहां से आ रही है इसके बारे में सोचने की क्षमता हिरणियों में नहीं रहती है। इसलिए और एक कारण है कि गोपियां उनको मूर्ख बता रही है कि देखो ध्वनि की एक ध्वनि आ रही है, बांसुरी की ध्वनि, बस आकर्षित हो गई और उस ध्वनि कहां उसके पीछे पीछे चले गए। इसके लिए एक सुंदर उपमा भी दी जाती है कि हमें बहुत सावधानी से विवेक बुद्धि से काम लेना चाहिए इस दुनिया में। हमारी आंखें हमको कई सुंदर चीजों के प्रति आकर्षित कर सकती हैं लेकिन हमें विवेक ले करना चाहिए कि कौन सी सुंदर वस्तु के प्रति हमारी आंखें जा रही हैं। केवल श्री कृष्ण के सुंदर रूप के प्रति जाने चाहिए। तो अगर हमारी आंखें अगर ऐसे सुंदर रूपों के पास जाएं जो वास्तव में सुंदर नहीं है, जो केवल भौतिक दृष्टि से सुंदर लगती हैं और इसकी वजह से हम कृष्ण को भूल जाएं, तो ये ऐसे होगा कि जैसे थोड़े जो कीड़े होते हैं अग्नि की ओर जाते हैं आकर्षित होकर। आपने देखा होगा कि रात के समय ऐसे कीड़े होते हैं जो प्रकाश से आकर्षित होते हैं और ये सोचते नहीं कि ये अग्नि है, मैं जब मेरा शरीर जल जाएगा इसमें, मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये नहीं सोचते, सीधा आकर्षित होकर चले जाते हैं। तो ठीक इसी तरह से लोग यहाँ सुंदर रूप के प्रति आकर्षित होकर सीधे जाते हैं भोग करने के लिए, सोचते नहीं है कि मेरे मृत्यु का कारण है।